घर परिवार।
प्रिय श्रोतागण, कार्यक्रम घर परिवार की यह कड़ी स्वाति और कायम रिजवी लेकर हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में तलाक के विषय पर चर्चा करेंगे। आशा है आप पसंद करेंगे।
संयुक्त जीवन के मूल आधार पति और पत्नी होते हैं। इन दोनों तत्वों के बीच जितना वैचारिक समन्वय और व्यक्तित्व में समानता होगी, उतना ही संयुक्त जीवन अधिक मजबूत और आनंददायक होगा। जैसा कि पवित्र कुरान के नूर सूरे की आयत संख्या 26 में ईश्वर कह रहा है, गंदी औरतें गंदे पुरुषों के लिए उचित हैं और गंदे पुरुष गंदी औरतों के लिए, जबकि पवित्र औरतें पवित्र पुरुषों के लिए और पवित्र पुरुष पवित्र महिलाओं के लिए उचित हैं। लोग जो कुछ उनके बारे में कहते हैं उससे ये लोग पाक हैं। उनके लिए ईश्वर की क्षमा और सम्मानित आजीविका है।
पवित्र कुरान के व्याख्याकारों का मानना है कि इस आयत का मतलब यह है कि पुरुष और औरतें अपने जोड़े के लोगों से ही शादी करें। यह वह बिंदु है जिस पर शादी के मामले में मनोवैज्ञानिक बल देते हैं। पुरुष और औरतें में शादी की दृष्टि से जोड़े विभिन्न आयाम से होने चाहिए, जैसे आस्था, विचार, संस्कृति, नैतिकता, शारीरिक रंग रूप, पारिवारिक व्यक्तित्व, उम्र और शिक्षा में जोड़े इत्यादि।
आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा की थी। आज हम तलाक के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो परिवार में हिंसा का परिणाम है। मीना शादी व तलाक के कार्यालय से लौटते हुए उंगली दबाए हुए बाहर देख रही है। उसके पिता ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों हो? मेरी बेटी, तुम खुश क्यों नहीं हो? बाप एक दृष्टि से सही था और दूसरी दृष्टि से गलत। बाप का बेटी से खुश रहने के लिए कहना इसलिए सही था क्योंकि बेटी मीना को हमीद के हाथों वर्षों की शारीरिक व मानसिक यातना से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन गलत इसलिए था कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि तलाक की वजह से बेटी को मानसिक व शारीरिक दृष्टि से कितनी चोट पहुंची थी। खुद मीना भी अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। दुख, क्रोध और बेचैनी उसके पूरे अस्तित्व में समाई हुई थी।
आज समाज के सामाजिक मानदंडों और विचारों में बदलाव आए हैं। पहले वाली पीढ़ियों में अगर औरतों की शादी सफल नहीं होती थी या वे हिंसा व यातना का शिकार होती थी तो कम तलाक लेती थीं। इसकी वजह पति पर पैसों की दृष्टि से निर्भरता थी और वे तलाक के सामाजिक दुष्परिणाम से डरती थीं। लेकिन आज समाज में औरतें काम करती हैं, उनका शैक्षणिक स्तर ऊँचा हो गया है, वे पैसों की दृष्टि से पति पर कम निर्भर होती हैं, इसीलिए वे अब तलाक या अलग होने से नहीं डरती। ऐसी औरतें और उनके पति के बीच संपर्क बनाने वाली एकमात्र कड़ी उनके बच्चे हो सकते हैं। ज्यादातर औरतें पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होती जा रही हैं।
आज हम देखते हैं कि पति पत्नी विशेष कर औरतें ऐसे दाम्पत्य जीवन को स्वीकार नहीं करती जिनसे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, और अगर उनकी ज़रूरतों के हल का कोई रास्ता नहीं निकलता तो वे तलाक ले लेती हैं। सवाल यह है कि पत्नियां पतियों से अलग होने या तलाक लेने का कारण क्या है? इस बारे में पारिवारिक मामलों के सलाहकार मेहदी आरफियार का कहना है कि बीवियों के तलाक लेने की असल वजह घरेलू हिंसा है। वे कहते हैं कि हिंसा से ग्रस्त संबंध होने की स्थिति में जैसे जैसे समय बीतता है औरत के लिए दाम्पत्य जीवन मूल्यहीन लगने लगता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाएं बारंबार घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, हालांकि उनका शैक्षिक स्तर बढ़ गया है। आशा की जाती है कि परिवारों और पति तथा पत्नी के बीच में हिंसा का स्तर जागरूकता बढ़ने से कम होगा, लेकिन शोध ये दर्शाते हैं कि शैक्षिक स्तर ऊपर होने के बावजूद भी पतियों ने उनके साथ हिंसक और कुछ ने तो बहुत ही खतरनाक व्यवहार अपना रखा है। अतीत में पत्नी के पास घर में ठहरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि पैसों की नज़र से वो पति पर बहुत निर्भर रहती थी और शायद उसे अपने परिवार का भी समर्थन हासिल नहीं था। लेकिन आज पैसों की दृष्टि से पुरुष पर निर्भरता कम होने की वजह से औरत के लिए शारीरिक, आत्मिक व मानसिक हिंसा इस बात के लिए काफ़ी है कि वो दुर्व्यवहार और हिंसा के चक्र से छुटकारा लेने के लिए तलाक ले ले।
औरतों के पतियों से तलाक लेने की एक वजह पति का पत्नी को सही तरह से समझ न पाना भी है। एक सफल दाम्पत्य जीवन खुले संपर्क और पारस्परिक समझ पर निर्भर होता है। इस तरह के प्राय संबंध न होने की वजह से अलगाव और तलाक होता है। इसके अलावा अगर पति का इस तरह का व्यवहार करे कि बीवी के आत्मसम्मान या संकल्प को चोट पहुँचे तो तलाक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पत्नी को किसी पेशे को अख्तियार करने से रोकना या ज़रूरी मामले में उसकी दृष्टिकोण को नज़रअंदाज करना पतियों के बीच प्रचलित आम व्यवहार है, जिसकी वजह से तलाक होता है।
एक अहम बात जिस पर पति पत्नी को ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अलगाव की वजह से मनुष्य एक अज्ञात जगत में खुद को महसूस करने लगता है, मानो हर चीज़ टूट गई है और आम जीवन की प्रक्रिया भी अतीत की ही तरह नहीं लगती। जिम्मेदारियां, काम, घर, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों और दोस्तों से भी संबंध विगत की तरह नहीं रहते।
हालिया वर्षों में विभिन्न देशों में तलाक की बढ़ती दर यह दर्शाती है कि तलाक जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी घटनाओं में है, जिससे अनेक शारीरिक व मानसिक मुश्किलें जन्म लेती हैं। मानसिक दृष्टि से क्रोध, दुख, बेचैनी और निराशा और शारीरिक दृष्टि से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, सिर और जोड़ों में दर्द जैसी मुश्किलें जन्म लेती हैं। इस तरह के शारीरिक रोगों के जन्म लेने का कारण दबाव की वजह से शरीर के सुरक्षा तंत्र पर पड़ने वाला कुप्रभाव है।
अलबत्ता दाम्पत्य जीवन का बंधन ऐसे समझौतों में होना जिससे अलग होना संभव हो स्वाभाविक लगता है, क्योंकि कभी ऐसे हालात सामने आते हैं कि पति पत्नी के लिए संयुक्त जीवन असंभव या बहुत कठिन हो जाता है या वो बुराइयों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में अगर इस बंधन को हमेशा बाकी रखने पर बल दिया जाए तो बहुत सी दूसरी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से इस्लाम ने तलाक का भी प्रावधान रखा है। इस्लाम नहीं चाहता कि दाम्पत्य जीवन को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया जाए। पति को चाहिए कि वो पत्नी को उसका समर्थक बनाए और पत्नी को चाहिए कि वो घर में अच्छी तरह से रहे, अर्थात परिवार को प्रेम का केंद्र होना चाहिए। जब पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो परिवार के आधार कमज़ोर होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए तलाक एक ज़रूरत है, लेकिन ऐसी ज़रूरत जिसका जितना मुमकिन हो कम से कम सामना करना पड़े, और जब दाम्पत्य जीवन को जारी रखा जा सकता है उस वक्त तक तलाक नहीं लेना चाहिए।
पवित्र कुरान के रूम सूरे की 21वीं आयत में शादी को ईश्वर की तत्वदर्शिता व निशानियों में बताया गया है, और निसा नामक सूरे की 21वीं आयत में निकाह और दाम्पत्य जीवन को ठोस संधि की संज्ञा दी गई है। इस आधार पर मुसलमान को जीवन साथी चुनने और बेटों व बेटियों की शादी की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया है और तलाक को घृणित बताया गया है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल इतना ज़्यादा मुझे बीवियों के बारे में अनुशंसा करते थे कि मुझे लगा कि औरतों को तलाक देना उस वक्त तक सही नहीं है जब तक कि उसका चाल चलन निश्चित रूप से ख़राब न हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईश्वर के निकट उस घर से ज़्यादा पसंदीदा कोई घर नहीं जिसमें शादी हुई हो, और ईश्वर के निकट उस घर से ज़्यादा घृणित कोई घर नहीं जिसमें तलाक हुआ हो। इसी तरह पैगंबर इस्लाम ने यह भी फरमाया है कि शादी करो लेकिन तलाक मत दो, क्योंकि तलाक देने से अर्श इलाही अर्थात आसमान थरथराने लगता है।
श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में दाम्पत्य जीवन के बारे में मशहूर चिकित्सक इब्न सीना के विचार से आपको अवगत करा रहे हैं। चौथी व पांचवी हिजरी कमरी के महान ईरानी चिकित्सक व दार्शनिक इब्न सीना ने अपनी किताब में परिवार की अहमियत और उसके तत्वों, शौहर व बीवी, माँ बाप और बच्चों के साथ संबंध के स्वरूप का उल्लेख किया है। वह पत्नी को पति की अमानतदार, आर्थिक भागीदार, घर चलाने में सहायक और शांति व सुकून का माध्यम बताते हैं। वह यौन जरूरत को एक स्वाभाविक चीज कहते हैं जिसे सिर्फ शादी के जरिए तृप्त करना चाहिए। इब्न सीना का मानना है कि एक आदर्श शहर के गठन के लिए दाम्पत्य जीवन को बढ़ावा दिया जाए, पुरुषों को शादी के लिए प्रेरित किया जाए ताकि मानव जीवन बाकी रह सके। शादी का समारोह सबके सामने होना चाहिए ताकि पारिवारिक संबंध स्पष्ट हो सके। शादी की उम्र बड़ी हद तक शारीरिक व बौद्धिक विकास पर निर्भर है ताकि व्यक्ति परिवार के संचालन में सफल रहे।